आयु को घर नहीं जाना था, इसलिए वो हॉस्पिटल में रुकने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ रही थी। उसने अयान को छोड़कर किसी और डॉक्टर की सर्जरी में असिस्ट करने का सोचा और वो ओटी में चली गई। सर्जरी काफी लंबी चली थी, इसलिए उसे बाहर निकलते निकलते रात की 9:30 हो गए थे। चेंज करने के बाद आयु अपने केबिन में परेशान बैठी थी। उसने खुद से कहा, कैसे पता लगाऊं कि वो वीडियो डैड को किसने भेजा होगा? रोहन इस मामले में मेरी हेल्प कर तो सकता है, पर वो करेगा नहीं। अयान को भी बताने का कोई फायदा नहीं है। आरफ से पूछा तो फिर वो गलत तरीके से पता लगाने की कोशिश करेगा। आयु अपनी उथेड़ बुन में खोई थी, तभी उसे मंथन का ख्याल आया। मंथन मेरी हेल्प कर तो सकता है, लेकिन मैं उसे कैसे सब बताऊंगी? मुझे नहीं लगता कि डैड मेरी सुनने वाले हैं। मैंने कुछ भी करने की कोशिश की तो मॉम डैड और गुस्सा हो जाएंगे। आयु वहां परेशान बैठी थी। वो उस सिचुएशन से निकलने के बारे में सोच रही थी। ओटी में होने की वजह से उसका फोन बाहर था और उसने अब तक चेक नहीं किया था। इस बीच आरफ के काफी सारे कॉल आ चुके थे। वॉट एवर यार, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो जो हो रहा है वो होने देती हूँ। वैसे भी मुझे आरफ के पास जाना था। उस दिन आरफ ने कहा था कि अगर मैं उससे शादी कर लूँ तो वो मुझे अपने सारे राज बता देगा। आरफ का सच सामने आने के बाद तो वैसे भी हमारी शादी नहीं टिकने वाली, तो कुछ वक्त का नाटक ही सही। मजबूरी में आयु ने वो सब करने का सोचा जिसके लिए जयजी उसे मजबूर कर रहे थे। अब आयु ने डिसीजन ले लिया था तो उसे घर जाने से कोई डर नहीं था। वो अपनी गाड़ी लेकर हॉस्पिटल से घर जाने के लिए निकल गई, लेकिन परेशान होने की वजह से वो काफ़ी रैश ड्राइविंग कर रही थी और इस वजह से उसकी गाड़ी किसी लोकल बस से टकरा गई। लकीली बस में ड्राइवर के अलावा और कोई पैसेंजर नहीं था। वहीं दूसरी तरफ आरव आयु से मिलने के लिए हॉस्पिटल की तरफ आ रहा था। रास्ते में ट्रैफिक जाम होने की वजह से भीड़ लगी थी। इतनी रात को कब से ट्रैफिक होने लगा? इस रोड पर तो जाम होता ही नहीं है, फिर ये लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं? आरव ने इरिटेट होकर कहा और अपनी गाड़ी से बाहर निकला। आरव ने बाहर निकलकर देखा, कुछ लोग एक गाड़ी और बस को घेर कर खड़े थे। तभी उसे एम्बुलेंस की आवाज़ सुनाई दी तो आरव खुद ही समझ गया वहां क्या हुआ होगा। तो यहां किसी का एक्सीडेंट हो गया है, आरव ने खुद से कहा। उसकी बात सुनकर उसके पास खड़े आदमी ने जवाब में कहा, हाँ काफी भयंकर एक्सीडेंट था, एम्बुलेंस आ रही है। गाड़ी में कोई लड़की थी, उसी की लापरवाही की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। जब गाड़ी चलानी आती नहीं है तो रोड पर गाड़ी लेकर निकलना जरूरी होता है क्या? आरव सिर हिलाकर कहा। वो भीड़ में थोड़े आगे गया तो उसे जानी पहचानी गाड़ी दिखाई दी। वो आयु की कार थी। उसे देखकर आरव घबरा गया और दौड़कर उसकी तरफ जाने लगा। अरे सर, आप उधर नहीं जा सकते, वहां खड़े कांस्टेबल ने उसे रोकते हुए कहा। मैं उसे जानता हूँ, वो मेरी जान पहचान में है, आरव ने जवाब दिया और कांस्टेबल को धकेलकर आयु की गाड़ी के पास गया। गाड़ी के आगे का हिस्सा पूरी तरह कुचल गया था। आरव ने गाड़ी का दरवाजा खोला, उसने देखा आयु का सिर स्टीयरिंग पर पड़ा हुआ था और उसका पैर भी नीचे फंसा हुआ था। आगे शीशा टूटने की वजह से वो उछलकर उसके हाथ में लगा हुआ था। उसे देखकर आरव बुरी तरह घबरा गया और आयु को गाड़ी से बाहर निकालने लगा। उसने आयु को गोद में उठाते हुए कहा, पता नहीं तुम इतनी केयरलेस क्यों हो कि तुम्हें अपनी जान तक की परवाह नहीं होती, कम से कम मेरा तो सोच लेती। अब जब हाँ ही कह दिया है तो अपना ध्यान तो रख सकती थी ना। आरव आयु को लेकर कांस्टेबल के पास आकर बोला, मैं इसे लाइफ केयर हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ, आप वहां आकर स्टेटमेंट ले सकते हैं, बाकी मेरा लॉयर पहले ही पहुंच जाएगा, कहकर आरव आयु को लेकर गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। आरव ने जल्दी से आयु को फ्रंट सीट के साइड में दिखाया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। उसने गाड़ी स्टार्ट की और सबसे पहले कबीर को कॉल किया। कबीर, उबलाई फैमिली चली गई है क्या घर से? उसने कबीर के कॉल पर करते ही सबसे पहले यही पूछा। नहीं, वो अभी भी यहीं हैं और आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, दादी ने उन्हें आज रात यहीं रुकने का बोला है और उन्होंने मना भी नहीं किया, कबीर ने बैठाया। ठीक है, फिर ऐसा करो, दादी के शक हुए बिना घर से निकलकर लाइफ केयर हॉस्पिटल आओ, अपने लॉयर को कॉल कर दो, एक्चुअली आयु का एक्सीडेंट हो गया है, बोलते हुए आरव ने आयु की तरफ देखा जो उसके बगल वाली सीट पर बेहोश पड़ी थी। फिर उसने आगे बताते हुए कहा, सिचुएशन देखकर लग रहा है कि गलती इसी की थी और दूसरे ड्राइवर को काफी चोटें आई हैं, तुम लॉयर को बोलकर इसकी एंटीसिपेटरी बिल और बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेना। ठीक है, मैं देखता हूँ, कहकर कबीर में कॉल कट कर दिया। वो आरव के बताए हुए काम पर लग गया। वहीं कबीर से बात करने के बाद आरव ने दूसरा कॉल अयान को किया। अयान उस वक्त खरा चुका था। आपने मुझे कॉल किया है ब्रो, इज एनीथिंग सीरियस और व्हाट? अयान ने हैरानी से पूछा। ज्यादा बताने का टाइम नहीं है, अभी के अभी लाइफ केयर हॉस्पिटल पहुंचो, आयु का एक्सीडेंट हो गया है, आरव ने बताया। वो जल्दबाजी में सबको कॉल कर रहा था। उसने आगे कहा, तुम्हें अच्छे से पता होगा वहां इस वक्त कौन सा स्टाफ मौजूद है और कौन सा अच्छा डॉक्टर हो सकता है। हमें हॉस्पिटल पहुंचने में आधे घंटे का टाइम लगेगा, मैं चाहता हूं तब तक आयु के लिए बेस्ट मेडिकल टीम पहले से ही मौजूद रहे। ठीक है, मैं आता हूं, उसे ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना, और आप गाड़ी में क्यों आ रहे हो? एम्बुलेंस को कॉल कर लेते, अयान ने घबराई आवाज में कहा। आयु के एक्सीडेंट का सुनकर वो भी परेशान हो गया था। आकर खुद ही चेक कर लेना, कहकर आरव ने कॉल कट कर दिया। अयान खुद तो जल्दबाजी में हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकता था, फिर भी उसने आयु के लिए टीम अरेंज करवा दी थी। वहीं इन सबके बीच आरव आयु के साथ हॉस्पिटल में पहुंचा। ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर की टीम पहले ही अवेलेबल होने की वजह से हॉस्पिटल पहुंचते ही आयु का ट्रीटमेंट शुरू हो गया। आरव वेटिंग एरिया में डॉक्टर के बाहर आने का वेट कर रहा था, वो अकेला था। तभी वहां कबीर पहुंचा। उन्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना, कबीर ने आते ही सबसे पहले आयु के बारे में पूछा। पता नहीं, पर वो बेहोश थी, ये लड़की सच में बहुत केयरलेस है, मुझे पहली बार किसी के लिए घबराहट हो रही है, आरव ने परेशान स्वर में कहा। वो वाकई आयु के लिए काफी डरा हुआ था। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, कबीर ने आरव का कंधा सहलाकर कहा। वो दोनों वहां खड़े होकर बातें कर रहे थे, तभी अयान भी वहां पहुंच चुका था।
अयान ने आरफ के पास जाकर कहा, मैं उसकी हेल्थ अपडेट लेकर आता हूँ। आरफ ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया। अयान अंदर गया और लगभग 10 मिनट बाद वापस आया। बाहर आकर अयान ने आरफ से कहा, उसे ज्यादा चोट नहीं लगी है, बस पैनिक होने की वजह से बेहोश हो गई थी। सारी रिपोर्ट्स मामला आई है, कोई इंटरनल इंजरी नहीं है, पैर की मसल्स इंजर्ड हो गई हैं और हाथ में कांच लगने की वजह से हल्का कट है, सर पर भी हल्की ही चोट है, जल्दी रिकवर कर जाएगी वो। थैंक गॉड, मैं तो उसके लिए घबराई गया था। अयान की आयु की हेल्थ अपडेट देने के बाद आरव ने राहत की सांस ली। उसने आगे पूछा, उसे होश कब तक आएगा? सुबह तक वो होश में आ जाएगी, अयान ने शांत लहजे में कहा। आयु के पूरे ट्रीटमेंट के बाद उसे प्राइवेट रूम में शिफ्ट किया जा रहा था। रूम में शिफ्ट करने के बाद आरव और अयान उसके पास बैठे थे, जबकि कबीर वहां से वापस जा चुका था।
पता नहीं आज क्या हुआ है जिसकी वजह से ये सुबह से ही अपसेट है। पहले पूरा दिन खुद को काम में बिजी रख रही थी और अब ये सब हो गया, अयान ने आयु की तरफ देखकर कहा। वो सुबह से ही आयु के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहा था, लेकिन उसे उससे बात करने का मौका नहीं मिला। आरव ने अयान की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने मन में कहा, कल भी मिस्टर ओबेरॉय के देखने के बाद ये अपसेट हो गई थी। पहले मुझे नहीं पता था कि ये उसके डैड हैं, अब उसके अपसेट होने का रीज़न समझ आ रहा है। कहीं आयु और मिस्टर ओबेरॉय के बीच तुझे लेकर तो कोई बहस नहीं हुई? आरव अपनी उधेड़बुन में खोया हुआ था, तभी आयु को होश आने लगा। अयान जल्दी से उठकर उसके पास गया और उसे चेक करने लगा। तुमने हमें डरा दिया था छिपकली, ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से सुबह से तू इतनी परेशान सी घूम रही है? जरूर कोई बात है जो तू हमसे छुपा रही है, इसी वजह से ही तेरा एक्सीडेंट हुआ है। आयु के होश में आते ही अयान हॉस्पिटल गुस्सा करने लगा। वहीं आरव चुपचाप खड़ा आयु के चेहरे को देख रहा था जो उतरा हुआ था। आयु ने फिर आरव की तरफ देखा और कहा, जब कोई चीज़ आप चाहते हो और आपको मिलने वाली हो तो माइंड में एक्साइटमेंट और नर्वसनेस एक साथ होती है, बस उसी चक्कर में ये सब हो गया, आयु ने धीमी आवाज में जवाब दिया। बोलते हुए उसकी नज़र आरव पर थी। कैसा एक्साइटमेंट? ऐसा क्या है जो तुझे मिल गया है और जिसकी वजह से तू इतनी खुश हो गई कि खुद की जान तक की परवाह नहीं की? अयान ने हैरानी से पूछा। वो सब तो तुम आरव से पूछो, ये बेहतर तरीके से जवाब देगा, बोलते हुए आयु का पूरा ध्यान आरव पर था। मुझे अभी इस बारे में बात नहीं करनी, वरना पूछने को बहुत कुछ है मेरे पास, आरव ने शांत लहजे में कहा। फिर उसने अयान की तरफ देखा और आगे कहा, तुम जाओ, मैं हूं इसके पास। ठीक है, फिर मैं अपने केबिन में हूं, आज रात के लिए मैं यहीं पर हूं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना, अयान ने कहा और फिर आयु की तरफ देखकर वहां से चला गया। मुझे तुमसे बात करनी है, आयु ने आरव से कहा। बातें तो मुझे भी तुमसे बहुत करनी है, लेकिन इस वक्त सही समय नहीं है, तुम आराम करो, अब हमारे पास एक दूसरे से बात करने के लिए हमारी पूरी ज़िंदगी है, आरव ने जवाब दिया। वो आयु से काफ़ी कुछ पूछना चाहता था, लेकिन उसका एक्सीडेंट होने के बाद अभी वो इस बारे में बात नहीं कर रहा था। कुछ ही देर में आयु को नींद आ गई थी, वहीं आरव उसकी तरस देख रहा था। उसने आयु की तरस देखकर अपने मन में कहा, तुम्हारी आंखों को देखकर हमेशा ही लगता था कि मैंने पहले भी इन्हें कहीं देखा है, तो तुम फेमस एक्ट्रेस अनुष्का सिंह ओबेरॉय की जुड़वा बहन हो, तुमने अपने आप से जुड़ा सबसे बड़ा सच से छुपाया है, और उसकी वजह क्या है उसका जवाब तुम ही दोगी। आरव वहां आयु से अपने सवालों के जवाब देने आया था, लेकिन उसके एक्सीडेंट होने की वजह से वो कुछ पूछ नहीं पाया।